लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि महिलाओं की गरिमा और अपार मूल्य को हर संस्कृति में मान्यता दी जाए तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों में उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओ, गाजा पट्टी में 6 महीने पहले भड़के युद्ध में अब तक लगभग 10,000 महिलाओं की जान जा चुकी है और हर 10 मिनट में एक बच्चे की या तो मौत हो रही है या वे घायल हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने पश्चिमी तट में बढ़ती हिंसा और ईरान द्वारा इसराइल पर हवाई हमलों से क्षेत्र में उपजे तनाव के बीच यह चेतावनी जारी की है। काबिज फिलिस्तीनी इलाके के लिए यूएन की मानव सहायता समूह ने आगाह किया है कि गाजा पट्टी में आम लोग गुजर बसर करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी टीम ने गत सप्ताह खान यूनिस इलाके में हालात का जायजा लिया। यहाँ से हाल ही में इसराइली सेना बलों की वापसी हुई है। मानव सहायता कर्मी स्थानीय आबादी तक मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, मगर उन्हें सुरक्षा सहायता मार्ग और इसराइली सैन्य बलों के समर्थन की जरूरत है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौर।
काबिज फलिस्तीन इलाके में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर रिचर्ड पेपरकॉर्न ने खान यूनिस में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हुई क्षति को बयां किया।
It is an eerie silence. No one and nothing is there. Most of the equipment, the machinery are damaged. It's a complete mess.
डॉक्टर पीपरकॉर्न कह रहे थे कि इस अस्पताल में डरा देने वाला सन्नाटा पसरा है। यहाँ अब कुछ भी नहीं है। अधिकांश मशीनें उपकरण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ये पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और कामकाज ठप है। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा को भी 2 सप्ताह तक चले इजरायली सैन्य अभियान में भारी क्षति पहुंची है। यूएन एजेंसी के अनुसार अस्पताल पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और जीवन रक्षक सेवाएं प्रदान करने वाली अन्य सामग्री बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। खान यूनिस की सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर बिना फटे हुए विस्फोटक आयुध सामग्री बिखरी हुई है, जिससे आम नागरिकों विशेष रूप से बच्चों के लिए जोखिम है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी संगठन ने क्षोभ जताया है कि सीमा चौकियों पर लंबी देरी और गाजा में पसरी असुरक्षा के कारण मानवीय राहत जरूरतमंदों तक पहुंचाने में रुकावटों से जूझना पड़ रहा है। गाजा के उत्तरी इलाके में अकाल की आशंका है, जहां आबादी का 70% हिस्सा भूखे पेट सोने के लिए मजबूर है और सहायता मार्ग में अवरोध बरकरार है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने दोहराया है कि गाजा में जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का सर्वोत्तम उपाय युद्ध विराम को लागू किया जाना है।
म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद हिंसक टकराव और असुरक्षा के बीच आम लोग बढ़ती निर्धनता, गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और मध्य वर्ग का आकार पिछले 3 वर्षों में 50% तक सिकुड़ चुका है। म्यांमार में 50% से अधिक बच्चे निर्धनता रेखा के नीचे जीवन गुजार रहे हैं। मौजूदा संकट देश के भविष्य और प्रतिभाओं के लिए एक खतरा है, जिससे कई पीढ़ियों की क्षमता पर असर हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक नई रिपोर्ट में ये निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं अंशु शर्मा।
पॉवर्टी एंड द हाउसहोल्ड इकोनॉमी ऑफ म्यांमार अ डिसअपियरिंग मिडिल क्लास शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद उपजी चुनौतियों और उनके गहरे प्रभावों को रेखांकित किया गया है। देश में आर्थिक झटकों को सहने और तेजी से अर्थव्यवस्था को उबारने में मध्य वर्ग की भूमिका को अहम माना जाता है, मगर यहां इसका आकार तेजी से घट रहा है और लोग फिर से निर्धनता के गर्त में धंस रहे हैं। रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया गया है कि निर्धनता में आए उछाल से नकदी हस्तांतरण और अन्य जरियों से निपटने के लिए प्रतिवर्ष 4 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट के लिए म्यांमार में 12,000 से अधिक घर परिवारों की जानकारी जुटाई गई। बताया गया है कि अधिकांश परिवारों को अपने जीवन यापन के लिए मजबूरी में कदम उठाने पड़े हैं, जिनमें स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर होने वाले खर्च में कटौती, जमा पूंजी का इस्तेमाल, उधार लेना और कम मात्रा में भोजन करने समेत अन्य उपाय हैं। देश में आंतरिक क्षेत्रीय विसंगतियों से भी मौजूदा संकट और गहन हो रहा है। हिंसक टकराव से ग्रस्त इलाकों में निर्धनता में उछाल आया है, जिसकी वजह घरों में हुई तबाही, खेतों तक जाने पर सख्ती, घरेलू विस्थापितों की संख्या में वृद्धि है। इससे अस्थिरता और आर्थिक कठिनाइयां बढ़ी हैं। इसके मद्देनजर शहरी व ग्रामीण इलाकों में विभिन्न समुदायों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के इरादे से तत्काल अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की पुकार लगाई गई है।
सूडान की राजधानी खार्तुम और उसके नजदीकी इलाकों में पिछले वर्ष अप्रैल महीने में सूडानी सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बल व उनके संबंध गुटों के बीच शुरू हुए टकराव के बाद से अब तक 80 लाख लोग अपने घर छोड़ चुके हैं, जबकि 20 लाख लोग शरणार्थी बन गए हैं। अपने देश की सीमा पार करके करीब 6,40,000 लोग दक्षिण सूडान में, 5,71,000 से अधिक लोग चाड में, 52,000 से ज्यादा लोग इथियोपिया में, 29,000 लोग मध्य अफ्रीकी गणराज्य में और 5,00,000 लोग मिस्र में शरण लिए हुए हैं। शरणार्थियों के मेजबान देशों में स्थानीय बुनियादी ढांचे पर बोझ बढ़ रहा है और मानवीय आवश्यकताओं की स्थिति गंभीर रूप धारण कर रही है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
सूडान के सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के बीच लड़ाई की वजह से लोगों की जिंदगियों पर असर हुआ है और वे बेहद डर में दिन गुजार रहे हैं। अब तक इस टकराव में कम से कम 13,000 लोगों की जान गई है, हजारों अन्य घायल हुए हैं। आम नागरिकों पर हमले और यौन व लिंग आधारित हिंसा के मामले बेरोक टोक जारी हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक बताई गई है, जिनके पास कुछ नहीं बचा है और जिन्हें तुरंत भोजन, जल, आश्रय और चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है। एक साल से जारी गृह युद्ध के कारण खाद्य उत्पादन प्रभावित हुआ है और स्थानीय समुदायों को जल और ईंधन जैसे अन्य आवश्यक संसाधनों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हिंसक संघर्ष से प्रभावित इलाकों में 50 लाख लोग अकाल के कगार पर बताए गए हैं। यूएन स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यदि तत्काल जीवन रक्षक कार्यों के लिए धनराशि मुहैया नहीं कराई गई तो आने वाले महीनों में भूख के कारण लगभग 2.25 लाख बच्चों, गर्भवती महिलाओं और नई माताओं के जीवन के लिए खतरा हो सकता है।
संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानव अधिकार विशेषज्ञों ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की युवतियों व लड़कियों के जबरन धर्मांतरण, अपहरण, तस्करी, उनका बचपन में ही जबरदस्ती विवाह कराने और यौन हिंसा का शिकार बनाए जाने की घटनाओं पर क्षोभ व्यक्त किया है। मानवाधिकार विशेषज्ञों ने पाकिस्तान से ऐसी घटनाओं के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का आग्रह किया है। साथ ही कम उम्र के बच्चों की जबरन शादी, उनके अपहरण और अल्पसंख्यक लड़कियों की तस्करी की रोकथाम के लिए कानूनी उपायों पर बल दिया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं अंशु शर्मा।
विशेष रिपोर्टर के समूह ने अपना एक वक्तव्य जारी किया है, जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय की युवतियों के लिए मौजूदा हालात और सुरक्षा के अभाव पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ईसाई और हिंदू धर्म की लड़कियों पर अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर किए जाने, उन्हें तस्करी व यौन हिंसा का शिकार बनाए जाने, उनका बाल विवाह होने और घरेलू गुलामी का शिकार बनाए जाने का जोखिम अधिक है। स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा कि बाल, जल्द और जबरन विवाह को किसी भी प्रकार से धार्मिक या सांस्कृतिक आधार पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने ध्यान दिलाया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी पीड़ित की आयु 18 वर्ष से कम होने की स्थिति में उसकी सहमति के कोई मायने नहीं है। मानवाधिकार विशेषज्ञों ने पाकिस्तान से नागरिक व राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र के अनुच्छेद 18 के संबंध में अपने तयशुदा दायित्वों का निर्वहन करने का आग्रह किया है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण पर पाबंदी लगाई जानी होगी। इसके अलावा युवतियों समेत सभी के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 18 वर्ष किया जाना होगा।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
सागर से भी गहरा प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा तू है महान आसमानों से भी ऊंचा तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा तू है महान आसमानों से भी ऊंचा तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा प्रभु तेरा प्यार
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। शांति के लिए स्कूल के शिक्षकों के विश्वव्यापी नेटवर्क के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को वैटिकन में संत पापा फ्रांसिस का साक्षात्कार कर उनका संदेश सुना। इस अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने शांति निर्माण के हर प्रयास की सराहना की तथा उदासीनता और व्यक्तिवाद का खंडन किया। इन शब्दों से संत पापा ने प्रतिभागियों का अभिवादन किया। एक बार फिर शांति के लिए स्कूल के राष्ट्रीय नेटवर्क से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। मैं आप सभी का स्वागत करता और आपको आपके विचारों पहलों प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और गतिविधियों से भरी इस यात्रा के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिसका उद्देश्य विश्व की एक नई दृष्टि को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा, मानवीय गरिमा को विकृत करने वाली नाटकीय स्थितियों अन्यायों और हिंसा के बीच सौंदर्य और आम भलाई के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में उत्साह से भरे रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद क्योंकि जुनून और उदारता के साथ आप भविष्य के निर्माण स्थल पर काम करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं। साथ ही संत पापा ने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया जो केवल आज पर केंद्रित जीवन के प्रलोभन पर काबू पाने के लिए प्रयासरत रहा करते हैं। संत पापा ने कहा, आज पहले से कहीं अधिक जिम्मेदारी के साथ जीने, अपने क्षितिज को व्यापक बनाने, आगे देखने और दिन ब दिन शांति के बीज बोने की जरूरत है जो कल अंकुरित होकर फल देने में सक्षम होंगे। शांति के लिए स्कूल के शिक्षकों से संत पापा ने कहा, आप इस महान सपने को अपने दिल में रखते हैं, शांति के खातिर और सावधानी पूर्वक आइए हम भविष्य को बदलें। उन्होंने कहा, इसी विषय पर मैं संक्षेप में ध्यान केंद्रित करके आपको कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूं जिस पर मैं बहुत विश्वास करता हूं, और वह यह कि आपको नायक बनने के लिए बुलाया गया है, भविष्य का दर्शक बनने के लिए नहीं। उन्होंने कहा, शांति के लिए स्कूल के शिक्षकों के इस विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन वास्तव में हमें याद दिलाता है कि हम सभी के सामने एक बेहतर भविष्य के निर्माण की चुनौती है, और सबसे बढ़कर यह बात कि हमें इसे एक साथ मिलकर करना है। अस्तु हम आने वाले विश्व और इसकी समस्याओं के समाधान के बारे में चिंताओं को केवल निर्दिष्ट संस्थानों और उन लोगों को नहीं सौंप सकते जिनकी विशेष सामाजिक और राजनैतिक जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने कहा कि यह सच है कि चुनौतियों के लिए विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि वे हमसे निकटता से संबंधित हैं। वे हर किसी के जीवन को छूते हैं और हम में से प्रत्येक से सक्रिय भागीदारी और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की मांग करते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने समस्त विश्व के कैथोलिक धर्मानुयायियों को आमंत्रित किया है कि 2025 में मनाए जाने वाले जयंती वर्ष की पृष्ठभूमि में वे विश्व को एकता में एकजुट एक प्रेमपूर्ण परिवार बनाने हेतु यीशु मसीह के सपने को साकार करें। शुक्रवार को एक ट्वीट संदेश प्रकाशित कर संत पापा फ्रांसिस ने लिखा, पवित्र वर्ष की ओर आइए, हम सब मिलकर आशा के तीर्थयात्रियों के रूप में अग्रसर होवें। अपनी बुलाहट की पुनः तलाश में और पवित्र आत्मा के विभिन्न उपहारों को साझा करते हुए हम यीशु के सपने के साक्षी बन सकते हैं। ईश्वर के प्रेम में एकजुट होकर हम सब एक और एकमात्र विश्व परिवार का निर्माण कर सकते हैं। घाना के आक्रा में जारी ग्लोबल क्रिश्चियन फोरम के चौथे विश्व सम्मेलन को प्रेषित संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने विश्व के समस्त ख्रिस्तियों के बीच एकता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभु येसु ख्रीस्त में अपने विश्वास को गहरा करने और भाईचारे के प्रेम को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया है। 15 से 20 अप्रैल तक घाना के आक्रा शहर में ग्लोबल क्रिश्चियन फोरम का चौथा विश्व सम्मेलन जारी है, जिसमें तमाम विश्व के कैथोलिक और विभिन्न ख्रिस्तीय संप्रदायों के प्रतिनिधि प्रार्थना, आराधना, अर्चना, संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एकत्र हुए हैं। सम्मेलन का विषय है ताकि विश्व जान सके। इसका उद्देश्य वर्तमान विश्व में येसु ख्रीस्त का साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु नवीन मार्गों की खोज करना है। सम्मेलन में उपस्थित सभी लोगों के प्रति अपना हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने वर्तमान वैश्विक विविधता की प्रशंसा की, जो समकालीन ख्रिस्तीय धर्म की एक सुंदर पच्चीकारी को दर्शाती है और यीशु मसीह के अनुयायियों के रूप में एक आम पहचान को साझा करती है। प्रतिभागियों के समक्ष संत पापा का संदेश ख्रिस्तियों के बीच एकता को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु गठित परम धर्म पीठीय परिषद के महासचिव महाधर्माध्यक्ष फ्लावियो पाचे द्वारा पढ़ा गया। संत योहन रचित सुसमाचार से लिए गए शीर्षक ताकि विश्व जान सके पर चिंतन करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि अपने व्यक्तिगत और कलीसियाई जीवन में त्रिएक ईश्वर की एकता और प्रेम को मूर्त रूप देने के लिए समस्त ख्रिस्तीय बुलाए गए हैं, ताकि वे विभाजन और प्रतिद्वंदिता से भयभीत दुनिया में प्रभु येसु के गवाह बन सकें। किनशासा के कैथोलिक धर्माधिपति महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल फ्रीडोलिन अम्बोंगो ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में नित्य बढ़ती हिंसा पर गहन चिंता व्यक्त की है तथा चेतावनी दी है कि देश के पूर्वी हिस्से में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। कार्डिनल महोदय ने चेतावनी दी है कि हथियारों से लैस मिलिशिया द्वारा हाल ही में क्षेत्र के कई कस्बों पर कब्जा कर लेने के बाद से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के पूर्वी क्षेत्र स्थित उत्तरी कीवू में स्थिति बहुत नाजुक हो चली है, जहां M23 लड़ाकू विमानों ने हथियार उठा लिए हैं और कई नगरों पर आगे बढ़ गए हैं। कैथोलिक कलीसिया की मिशनरी समाचार एजेंसी फीडेस न्यूज से बातचीत में कार्डिनल अबोंगो ने कहा, M23 लड़ाकू विमानों ने क्षेत्र पर विजय प्राप्त करना जारी रखा है, जबकि कांगो सेना पूरी तरह से अराजकता में है और जिस चीज की सबसे अधिक आशंका है वह सामान्य असुरक्षा का जोखिम है, विशेष रूप से गोमा में और आमतौर पर देश के पूरे हिस्से में। उन्होंने कहा कि पीड़ित लोगों के प्रति प्रेरित देखभाल हमें यह देखने के लिए बुलाती है कि हम इन पीड़ितों के प्रति ईश्वर का तनिक प्रेम और उनकी दया कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। कार्डिनल अबोंगो ने ध्यान आकर्षित कराया कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की कलीसिया यही करने की कोशिश कर रही है, हालांकि यह काम हमेशा आसान नहीं होता है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।